Berarti gelar jabatan. In. Yare. 1966. चौथी फीस के मध्य में बात चल रही थी याद करते करते सतो प्रधान बन गए और सत्य धाम के सिवाय यहाँ रहेंगे क्यों? आत्मा शरीर छोड़ करके भागे, अभी ये बात समझाने की कितनी अच्छी है। शिव बाबा का चित्र दिखाओ, शिव बाबा का, ये नहीं कहा शिव बाप का, शिव बाप का चित्र होता है वो तो विचित्र है, माने विपरीत, चित्र माना चित्र के विपरीत है, उसका चित्र खींचा नहीं जा सकता। तो शिव बाबा का चित्र दिखाओ, शिव बाबा का चित्र दिखा करके बोलो ये बाबा है। ग्रैंडफादर है, हम मनुष्य आत्माओं का बाप प्रजापिता, वो बाप है और बाबा है शिव बाप है, प्रजापिता का भी बाप कौन है? शिव बाप है। तो बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है। प्रजापिता है इस लोक का बाप है और शिव बाप पार लोक का बाप है, दोनों वेद के बाप। प्रजापिता भी वेद 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है, परंतु चंचल मन वाले मनुष्यों का बाप है। शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है, आत्मा अगर निराकारी स्टेज में टिक जाए तो मन चंचल होगा नहीं होगा, तो वो निश्चल आत्माओं का बाप है, वो सदा अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है। परंतु जो सदैव सोचता अमन है वो शिव बाप जब मनुष्यों के पाप में आता है, मुकर्रर तन में आता है, तो उनको याद करने से इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निराकार से निराकारी वर्षा चाहिए या निराकार और साकार के मेल से साकारी स्वर्ग के सुख का वर्षा चाहिए। इन बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन क्यों कहा, इसे क्यों नहीं कहा है? क्योंकि दो आत्माओं का मेल है, उनका मेल होने से ही प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं का स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। तो ये बातें समझाने की बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल ही अच्छी है। बस पीछे दूसरी बात, क्या दूसरी बात भाई? ये ब्रह्म है, ये फलाना है, कोई कहते हैं इनको क्यों रखा है? अरे इनकी बात छोड़ो, इनकी इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है, इनसे क्यों कहा? बहुवचन क्यों कर दिया ब्रह्मा की? क्योंकि ब्रह्मा बहुतों के नाम है या एक का नाम है? बहुतों के नाम है। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर के विष्णु बनेंगे। अव्वल नंबर का ब्रह्मा परम ब्रह्म, तो अव्वल नंबर का विष्णु बनेगा। विष्णु की चार भुजाएं दिखाती हैं, परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला होता है? तो चार भुजाओं को, इन विष्णु की चार भुजाओं को अर्थात मददगार आत्माओं को चलाने वाला कौन है? अरे कौन सी भुजा चलाने वाला कोई भुजा में है या भुजाओं से ऊपर है? तो अव्वल नंबर का विष्णु कौन हुआ है? जो भुजाओं के भी ऊपर है, भुजाओं को भी चलाने वाला है, वो हुआ अव्वल नंबर विष्णु। तो बोला इन ब्रह्मा की बात छोड़ो, इन ब्रह्मा की जो सहयोगी भुजाओं के रूप में है, परंतु इनको चलाने वाला कोई और है। तो इनसे तो बात करना छोड़ो, जिनसे है एक से नहीं कहा, इन इनमें से माने जो चार भुजाएं हैं इनसे तो बात करना छोड़ो, पर बात बाप भगवान कहते हैं क्या? कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप। वो है असली भगवान। एक आत्मा निवृत्ति मार्ग वाली या जब वो प्रवृत्ति में आता है तब भगवान। तुम प्रवृत्ति वाले भगवान को याद करते हो या निवृत्ति वाले को याद करते हो? है निवृत्ति वाले सन्यासियों को जो याद करेंगे तो क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। जैसे धर्म पिता है किसको याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं या निराकार साकार की प्रवृत्ति को याद करते हैं? तो भगवान की बनाई हुई जो स्वर्ग की प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया है भगवान की सुखी सृष्टि है। उस सुखी सृष्टि में आते हैं या परमधाम में जाके आधा कल्प बैठते हैं? है कहाँ बैठते हैं? निवृत्ति धाम में बैठते हैं या प्रवृत्ति धाम में बैठते हैं? प्रवृत्ति धाम में। निवृत्ति धाम में बैठते हैं। तो तुम जिस भगवान को याद करते हो वो भगवान निवृत्ति वाली आत्मा है या प्रवृत्ति वाली आत्मा है? प्रवृत्ति वाली है तो कौन कौन की प्रवृत्ति है? है शिव बाप और मनुष्यों का बाप। एक है सदा सर्वता निराकार जैसे आत्मा निराकार, परंतु निराकार आत्मा कुछ कर सकेगी? है जब तक शरीर की प्रवृत्ति में ना आए। तो ऐसे ही तो सदा सर्वथा निराकार बाप साकार मुकर्रर रथ की प्रवृत्ति में आते हैं। मुकर्रर रथ क्यों कहा? टेम्परेरी मने थोड़े समय के लिए, और मुकर्रर मने सदाकाल के लिए। जैसे 84 जन्मों में 84 बाप होते हैं किसी आत्मा के, तो 84 बाप मुकर्रर हुए या टेम्परेरी हुए? और ये मुकर्रर रथ है जिसका भगवान बाप शिव लेते हैं
वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुकर्रर रहता है या टेम्परेरी रहता है? मुकर्रर रहता है। तो वो बाप भगवान प्रवृत्ति वाला कहते हैं कि मैं जब परम धाम से आता हूँ तो प्रवृत्ति पहली पहली किसके साथ निभाता हूँ? है इसके साथ प्रजापिता ब्रह्मा के साथ निभाता हूँ। मैं आता हूँ। किसके पास आता हूँ? प्रजापिता के पास आता हूँ। तो आशिक कौन हुआ और मासूक कौन हुआ? है जो तुम्हारा मासूक है वो मेरा भी मासूक है। कौन? प्रजापिता। तो मैं आशिक प्रजापिता रूपी जो मासूक है उसके पीछे भाग के आता हूँ। दुनिया में क्या होता है? आशिक मासूक के पीछे भागता है या मासूक आशिक के पीछे भागता है? हैं? आशिक मासूक के पीछे भागता है। तुम भी भाग भाग के आते हो ना? हैं? आते। तो बाप भगवान कहते हैं, कौन कहते हैं? बाप भगवान कहते हैं। ये एक आत्मा है या दो आत्मा है? है तो दो आत्मा, लेकिन पर्सनालिटी एक है, व्यक्तित्व एक है, लेकिन कहने वाला एक है, व्यक्तित्व आत्माएं तो दो हैं, कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? पहला पहला कॉम्बिनेशन है तो बाप दादा पहला पहला किसको कहेंगे? है शिव बाप, बाप है कि दादा भी है? है दादा माने बड़ा भाई, और बाप माने? बाप एक होता है या बहुत होते हैं? एक होता है। उसको बाबा भी कहते हैं, दुनिया में बाप को बाबा भी कहते हैं, फिर कहते हैं छोटा बाबा बड़ा बाबा। बाप का भी बाप क्या कहते हैं? बड़ा बाबा। तो बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, माना कहने वाला कौन? शिव बाप। उसी की याद करो। मुझे एक को कहा जाता है या दो या चार बहुतों को कहा जाता है? तो कौन कहता है? शिव बाप एक कहता है। एक कैसे कहेगा? एक जिसकी आत्मा का ही नाम बिंदी का ही नाम शिव है वो बोलेगा। है नहीं बोलेगा तो फिर भगवान कौन जिसमें प्रवेश करता हो? लो सुनो, पक्का हो गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मुरली में, क्या है? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं, इनमें से कोई शिव बाबा को पूछता ही नहीं। बाबा झूठ तो नहीं बोलते हैं? है? है? सच बोलते हैं। कैसे? ऐसे सच बोलते हैं कि तुम जब शिव बाबा की याद में बैठते हो तो साकार बाबा के चेहरे को याद करते हो, फिर साकार बाबा के चेहरे में मस्तक में ब्रकुटी में उस भरी पूरी ब्रकुटी में शिव को याद करते हो, मेरी बिंदु को याद करते हो, फिर कितनी देर टिकते हो? है मुझे बिंदी शिव की याद में कितनी देर टिकते हो? अरे बोलते ही नहीं, बोलती बंद हो गई। एक सेकंड, दो सेकंड, पांच, दस सेकंड, फिर किसको याद करते? फिर साकार को याद करते। ऐसा क्यों होता है? है ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। साकार शरीरधारी आत्मा को याद करने की, साकार शरीरधारी से प्यार करने की रग पड़ी हुई है। इसलिए अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। कितने जन्मों का? 63 जन्मों का अभ्यास पक्का है। तो हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अभ्यास करने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए? समय तो चाहिए। पर गीता में भी लिखा है कि मन जो कंट्रोल करना मुश्किल है, चंचल मन को, उसको कंट्रोल करने के लिए दो ही उपाय हैं, एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें, बार बार मन भाग जाएगा। एक सेकंड याद करेंगे, दो सेकंड याद करेंगे, भाग जाएंगे। तो क्या करें? फिर भागते हुए मन को है कहाँ लगाना है? है कहाँ लगाना है? साकार में जो निराकार बैठा हुआ है उसकी याद में लगाना है। तो अभ्यास कब पक्का होगा? अभ्यास जो है उसमें मजबूती कब आएगी? कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या? बिनु बैराग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम वो त्रेता वाला राम नहीं, कौन सा? वो निराकार राम। उसकी कृपा कब होगी? वो कब खुश होता है? वैराग से खुश होता है, वैराग की प्राप्ति के लिए वैराग से ही खुश होता है। ये क्या बात है? अरे सभी ब्राह्मणों का अनुभव तो होगा, भगवान किस बात से खुश होता है? है खुश होता है जिन बच्चों से उनको याद भी करता है। अब याद आया, तमिलनाडु, तुम याद नहीं करते तो हम भी याद नहीं करेंगे, तुमको याद आ गया तो हमको भी याद आ गया। तो बाप सेवा से खुश होते हैं, ईश्वरीय सेवा जितनी जास्ती करेंगे, स्वार्थ पूर्वक नहीं, स्व के रथ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। विश्व कल्याण के लिए जितनी सेवा करेंगे, क्योंकि बाप विश्व कल्याणकारी है या स्व कल्याणकारी है? है विश्व कल्याणकारी है, विश्व पिता है। कोई 2, 4, 8, 5 क्राइस्ट की तरह 250-300 करोड़ का बाप तो नहीं है, लिमिटेड बाप है, अनलिमिटेड बाप है, है? अनलिमिटेड बाप है, बेहद का बाप है। और दोनों बेहद के बाप कंबाइंड हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अभी संगम युग में कंबाइंड हैं, दोनों का संगम है या अलग अलग हैं? है कंबाइंड है। तो वो कंबाइंड बाप भगवान कहते हैं। क्या टाइटल दिया बाप का? भगवान। ये क्या बात हुई, फिर भगवान क्यों कहते हैं? है निराकारी माने भगवान, ऐसे होता है क्या? है शब्दों के अर्थ होते हैं कि नहीं? तो भगवान क्यों कहा? भाग्यवान। अच्छा, शिव भाग्यवान है, बेचारा 5000 साल ऊपर पड़ा रहता है, कोई सुख नहीं भोगता, वो भाग्यवान हो गया। जो सुख न भोगे उसको भाग्यवान कहेंगे? कहेंगे है भाग्य बनाने वाला भी अकेली आत्मा है कि प्रवृत्ति में आता है तब भाग्य बनाता है? प्रवृत्ति में आता है तब भाग्य बनाता है। तो धनवान कहा जाए, क्या कहा जाए? धनवान माने धन वाला। धनवान का क्या अर्थ हुआ? धन वाला। दो बातें हुई, एक तो धन और दूसरा वाला, और यहाँ क्या है? भगवान। एक है भग शब्द और दूसरा है वन वाला। तो ये दोनों आत्माएं भग वाली हैं, इनके पास ढेर भग का भंडार है, इनके पास। एक के पास कि दोनों के पास? है एक के पास। कौन है एक के पास? निराकार आत्मा के पास, या जो निराकार सो साकार भी बनता है उसके पास? है साकार के पास है, निराकार के पास नहीं। अगर साकार के पास होती तो साकार की याद है शिवलिंग, साकार की याद लिंग है, या लिंग में पड़ा हुआ बिंदु है? मुरली में बात चल रही थी बाप भगवान की, इन ब्रह्मा की बात छोड़ो, पर बात बाप भगवान कहते हैं। एक आत्मा कहती है या दो आत्मा कहती हैं मिलकर के? हैं दो आत्मा मिलकर के कहती हैं तब कहा जाता है बाप भगवान कहते हैं। तो इनमें जो बाप दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप एक ही पर्सनालिटी में, इन दोनों आत्माओं में भगवान कौन? दोनों हैं भगवान या एक भगवान? एक भगवान। दोनों भगवान, अरे या दोनों होंगे या एक होगा, है भगवान एक होता है या दो होते हैं? एक होता है। तो जो एक भगवान होता है वो बिंदी रूप में ही होता है या पर्सनालिटी होती है? भूत प्रवेश करते हैं तो पर्सनालिटी एक होती है, और भूत की आत्मा होती है कि नहीं? बताओ, माता की आत्मा तलवार लेके चल रही थी, तो बाप भगवान कहते हैं, कहने वाले दो हुए या एक हुआ? है एक हुआ। दो आत्माएं कहती हैं या एक आत्मा कहती है? है तो कौन है, कौन सी आत्मा कहती है? है शिव बाप कहते हैं, वो भगवान है शिव, मेरी बिंदी का ही नाम है शिव। है भगवान है, धनवान है, है लो, अरे वो तो बेहद का धनवान है, है या नहीं? और जिसके पास बेहद का धन होता है वो भाग्यवान होता है या नहीं होता है? है? तो बेहद का धन माता के पास होता है या पिता के पास होता है? है पिता के पास होता है। फिर लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? है बांटती है, बाप नहीं बांटता है, है बाप माता को बांटता है। बाप जो धन कमाता है किसको रखता है, किसके हाथ में देता है? माता के हाथ में देता है, माने माता को बाप से मिलता है और बच्चों को माता से मिलता है। यही दुनिया में होता है कि नहीं? यही दुनिया में भी होता है। जो बाप भगवान आकर के करते हैं दुनिया भी वो ही काम करती है। इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य, मेरे रास्ते का ही अनुगमन सभी मनुष्य टाइम टू टाइम अनुगमन करते हैं। जैसे कर्म मैं करता हूँ मुझे देखकर सारी दुनिया उन कर्मों का अनुवर्तन करती है। मैंने क्या किया, मैंने जिसको माता बनाया परम ब्रह्म, पहला पहला अब्बल नंबर माता कौन है? प्रजापिता। सिर्फ प्रजापिता या प्रजापिता ब्रह्मा भी है? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको माता बनाया उसको मैंने सारा ज्ञान धन दिया कि कोई बच्चों को दिया है, ब्रह्मा को दिया, विष्णु को दिया है, नहीं दिया। 500-700 करोड़ मनुष्यों में से 33 करोड़ देवताओं में से एक प्रजापिता के सिवाय और किसी को दिया हा? नहीं दिया हा? दिया कि नहीं दिया हा? दिया
नहीं दिया,
अगर कहें ब्रह्मा को दिया तो ब्रह्मा को बाबा ने कहा कृष्ण तो बच्चा है और राम बाप को कहा जाता है, क्योंकि जो राम नामधारी भक्ति मार्ग में आत्मा है उसी में मैं प्रवेश करता हूं। और विश्व पिता का पाठ बजाता है, जिसमें प्रवेश करता हूं तो सारा ज्ञान का भंडार भी किसी में प्रवेश कर जाता है, विश्व पिता। मैं हूं क्या? शिव क्या है? बिंदी तो है, वो तो सभी आत्माएं बिंदी है, ये तो कोई खास बात नहीं, स्पेशल बात नहीं, सामान्य बात है कि सभी मनुष्य आत्माएं, सभी देव आत्माएं, सभी राक्षसी आत्माएं क्या है? बिंदु है। लेकिन उन बिंदु बिंदु आत्माओं में भी सारा ज्ञान धन हासिल करने वाली आत्मा कौन सी है? है प्रजापिता, क्योंकि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उसको पूरा पूरा एक ही पहचानता है कि सब पहचानते हैं, एक ही पूरा पूरा पहचानता है। और जो 100% पहचानेगा वो 100% प्राप्ति भी करेगा या नहीं करेगा भगवान से है? तो देखो, शिव बाप ने जिसको अपनी बन्नी बनाया, किसको? प्रजापिता को। सारा धन उसको सौंप दिया या नहीं सौंपा? सबसे बड़ा धन क्या होता है? ज्ञान धन। और प्योरिटी का धन नहीं है, उसे एवर प्योर नहीं कहा जाता है, कहा जाता है। तो जो एवर प्योरिटी 5000 वर्ष तक निर्धारित है या कल्प कल्पांतर के लिए निर्धारित है? उस सुप्रीम सोल में है, कल्प कल्पांतर के लिए निर्धारित है। तो वो शिव बाप क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। और ज्ञान योग अलग चीज नहीं है, ज्ञान गीता की भाषा में सांख्य को कहा जाता है। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, आख्या माने व्याख्या। ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जिसकी व्याख्या की जा सके। अगर कोई व्याख्या नहीं कर सकता है तो कहेंगे उसमें ज्ञान है? है? नहीं कहेंगे। ज्ञानी है या अज्ञानी? अज्ञानी है। तो शास्त्रों में सांख्य का व्याख्याता किसको कहा है? व्यास को तो कहा जाता है वेद व्यास। क्या? वेद व्यास कहा जाता है। वेदों की व्याख्याकार नहीं कहा जाता। क्या? जैसे ब्रह्मा की वाणी क्या है? वेद वाणी है। ब्रह्मा के मुख से कहते हैं वेद निकले। वेद वाणी तो है, लेकिन क्या ब्रह्मा ने उस वेद वाणी की व्याख्या की? व्याख्या कर सकता था? क्यों? बच्चा बुद्धि था। दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश करके वेद वाणी तो सुनाई और ये भी बता दिया कि वो वेद वाणी गीता ज्ञान है। क्या? लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं है, ये बोला। क्या बोला? गीता ज्ञान तो है लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं है। गीता ज्ञान सुनने से अमर बनते हैं, देवता बनते हैं, या गीता ज्ञान अमृत जब बनता है तब देवता बनते हैं पीने से? है? जब गीता ज्ञान का आलोड़न किया जाता है, मंथन किया जाता है, जैसे दही को दूध को मथन मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है, घी बनता है, ताकत आ जाती है, शक्ति आती है। तो पहले ज्ञान है या पहले शक्ति है? पहले ज्ञान अमृत होना चाहिए, फिर शक्ति प्राप्त होगी। बाकी ज्ञान है तो शक्ति आएगी, ज्ञान नहीं है तो शक्ति भी नहीं आएगी। वेद वाणी है तो वेद वाणी की व्याख्या भी आएगी, वेद वाणी ही नहीं तो व्याख्या कहां से आएगी? इसलिए गीता में बोला सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है क्या? जो योग है वो ज्ञान भी है, ज्ञान रूपी दूध है, तो उसमें सार भी है। जितना ज्ञान का विस्तार है, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ और जितना लिखा जाए उतना लिखो, तो भी ज्ञान पूरा इतना विस्तार है, लेकिन उसका सार क्या है? है? सार है योग, याद। बाप आकर के ब्रह्मा तन में ब्रह्मा के दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाई। क्या सुनाया? गीता ज्ञान सुनाया। लेकिन गीता ज्ञान का दादा लेखराज मुख से व्याख्या तो नहीं आई। आई नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बच्चा बुद्धि था। भक्ति मार्ग में भी बच्चा कृष्ण की पूजा होती है, बड़े कृष्ण की पूजा नहीं होती है। तो देखो, ज्ञान जो है वो मंथन से आता है, तब ज्ञान अमृत कहा जाता है। क्या? ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी रूपी मुरली जिन्हें कहते हैं कि कृष्ण ने मुरलिया बजाई, लेकिन समझ में किसी को नहीं आई। कृष्ण ने मुरली बजाई, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, गुही अर्थ क्या हुआ, सार क्या निकला, ये कृष्ण ने भी नहीं समझा। तो फायदा होगा है? फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? वो ज्ञान में से सार निकालना पड़े। तो सार जो जितना निकालेगा मंथन करके अपनी गोट, तो नशा चढ़े। या ये कहा कि दूसरे का घोटा हुआ भांग अगर पी लेंगे तो ज्यादा नशा चढ़ेगा, घोटने वाले को ज्यादा नशा चढ़ेगा या घुटी घुटाई पीने वाले को ज्यादा नशा चढ़ेगा? घोटने वाले को ज्यादा नशा चढ़ेगा। शास्त्रों में भी लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बात कहां की है? यहां संगम में कलयुग के अंत में भगवान बाप जब आते हैं तो जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का सार जो प्योरिटी देते हैं, लंबे समय की प्योरिटी की पावर इस कल्प में, कितने समय की प्योरिटी की पावर उनके पास है? 5000 वर्ष की प्योरिटी की पावर। किसी और के संग के रंग में आए क्या? नहीं आए। वो सारी पावर किसको दी? प्रजापिता को दी। क्या पावर है? अखूट भंडार काहे का ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार और साथ में योग तो है ही है। दूध है तो दूध में सार नहीं है, सार तो है ही। तो अखूट ज्ञान का जो भंडार है उस भंडार को पहले दिया या सार दिया? है भंडार दिया, ज्ञान का भंडार दिया, गीता ज्ञान दिया। जिसके द्वारा दिया वो तो बच्चा बुद्धि था, धारण नहीं किया। जो सालिम बुद्धि था उसने धारण किया। राम बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बाप है राम बाप, तो उसने धारण किया। और जिसने धारण कराया वो बाप हुआ। बाप क्या करता है? बाप के अंदर जो सार रूप वीर्य है, मनुष्य के अंदर कौन सा तत्व है, पुरुष के अंदर कौन सा तत्व है, जो सार है, जिस सार से लाल पैदा होता है, लाल है ना, तो वो सार अर्पण किया और लंबे समय की प्योरिटी का सार अर्पण किया या अल्पकाल का अर्पण किया? लंबे समय की प्योरिटी का सार वो अब्बल नंबर माता को अर्पण किया। भारत में भारतवासी बोला है कि एक स्त्री मर जाती है तो क्या करते हैं? है एक जूती गई और दूसरी पहन ली, दूसरी मर गई है तो तीसरी पहन ली। जीवन में तीन तीन चार चार शादियां भी कर लेते हैं तो बताओ कौन सी माता ज्यादा भाग्यशाली हुई? है ज्यादा पावरफुल बच्चा कौन सी माता से जन्म लेगा? पहली माता से। ये परंपरा भारतवासियों में कहां से पड़ी? संगम युग में जब बाप आते हैं तो एक ब्रह्मा बनाते हैं, बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, या चार चार पांच पांच भी शादियां करते हैं। है कितनी करते हैं? भगवान बाप है तो करे एक, आप कहते पांच है। अरे ब्रह्मा पांच दिखाए जाते हैं ना शास्त्रों में, चौमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। अरे कंपिल में चौमुखी महादेव का मंदिर देखा नहीं? देखा, वहां है चौमुखी महादेव, चार मुख वाला। कहते हैं पांचवा मुख काट दिया, काट दिया तो वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? है अच्छा हुआ, वो तो सबके सर काट देती है महाकाली, अच्छा है। मुख काट देना मन देवान अलग कर दिया और आत्मा अलग कर दी। तो जो मुख काट दिया तो पहला पहला परम ब्रह्म वो ही बना, जिसका देहभान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। तो विष्णु में विष्णु पार्टधारी जो भी सहयोगी भुजाओं के साथ कहा जाता है उसमें पहला मुख कौन हुआ? कट गया वो या जो नहीं कटे वो? जो कट गया वो परम ब्रह्म हुआ। जो चारों भुजाओं को कंट्रोल करता है, चारों मुखों का मुखिया है। तो बात आई कि भारत में राजाओं ने भी, राजाओं की प्रजा ने भी एक स्त्री मरी तो दूसरी की, दूसरी मरी तो तीसरी, तीसरी मरी तो चौथी, चार चार पांच पांच शादियां करते हैं। उन शादियां करने वालों ने, भारतवासियों ने भगवान को फॉलो किया या नहीं किया? है, भगवान को फॉलो किया। ये फॉलो करने की प्रथा कहां से चली? है, संगम युग में भगवान आता है तब ये प्रथा डाली। पहला परम ब्रह्म, बड़ी मां, प्रजापिता, राम वाली आत्मा। दूसरा ब्रह्मा कौन है? हाँ, राम वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है, उसके बाद किसका पार्ट प्रत्यक्ष होता है? लक्ष्मी का। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 5000 वर्ष हुआ। तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, तो सेकंड भी लक्ष्मी नारायण होंगे कि नहीं होंगे? है, कौन है? कौन? एक आदमी बोलो। सचिव के राधा कृष्ण। अच्छा, शिव बाप परम धाम से आया, ज्ञान सुनाने के लिए आता है या भक्ति सिखाने के लिए आता है? तो पहला पहला ज्ञान का बीज कौन सी माता में डाला? है, किसमें? प्रजापिता में डाला, राम वाली आत्मा में डाला। वो तो परम ब्रह्म हुआ, बड़ी अम्मा। उसके बाद किस में डाला? है, कौन? माता गुरु। कौन सी आत्मा है? लक्ष्मी। कैसे? क्लेरिफाई करो। है, हाँ, भले जो यज्ञ के आदि में बड़ी माता थी, बड़ बोली, उसके मुख से साक्षात्कारों का विवरण सुनाया तो गया, मुख तो था, सुनाने वाला पहला पहला, जिसके मुख से पहली पहली बार कोई फर्स्ट ब्राह्मण ने सुना, सुना या नहीं सुना? पहला ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कब कहा जाता है? ब्राह्मण तब कहा जाता है जब ब्रह्मा मुख से सुनकर ब्रह्मा की औलाद बने। कि सिर्फ गोद में खेला, सुना कुछ नहीं, सुना तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो ब्राह्मण पक्का कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ब्राह्मण पक्का बना कौन? प्रजापिता ब्रह्मा पक्का पहला ब्राह्मण भी बना और पहला ब्रह्मा भी है, परम ब्रह्म कहा गया। पहली पत्नी से जो पहला बच्चा पैदा होता है, वर्षा किसको मिलता है? बड़े बच्चे को वर्षा मिलता है, पहली पत्नी के बच्चे को मिलता है या दूसरी तीसरी चौथी पत्नी के बच्चे को मिलता है? है पहली पत्नी के बच्चे वर्षा मिलता है। क्यों है? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पहली पत्नी ने गर्भ धारण किया और उससे उस लाल का जन्म हुआ। तो पावरफुल होगा सब बच्चों के मुकाबले या कमजोर होगा? पावरफुल होता है, इसलिए ये परंपरा चल पड़ी भक्ति मार्ग में। क्या हैं कि पहली रानी से जो बड़ा बच्चा पैदा होता है, हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए मोस्टली उन्होंने उस बड़े बच्चे को ही राजाई का वर्षा दे दिया। तो बात पक्की हुई कि नहीं? क्या गीता में जो लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, मेरे रास्ते का ही अनुगमन सारे मनुष्य करते हैं। मनुष्य क्यों कहा? जो मनु की औलाद बने, मनु माने मनन चिंतन करने वाला मन। कौन सा मन? अमन नहीं, मन अमन, मन कहीं अमन होता है? मन वो जो पहले पहले मनन चिंतन मंथन करके बाप का मन बने, मन माने दिल बने। अरे शिव बाप का दिल किसके ऊपर आ गया? बाप का दिल कौन है? दिलवाड़ा मंदिर यादगार है, दिलवाला कौन है? दिल अव्वल नंबर का, और कौन है दिलवाला? शिव बाप है दिलवाला, और अव्वल नंबर मन है या दिल कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा पहली पत्नी, शिव बाप का दिल इस दुनिया में आया परम धाम त्याग करके, अपना घर त्याग करके, तो किसके ऊपर दिल आया है? तो प्रजापिता दिल हुआ भगवान बाप का। पक्की प्रवृत्ति हुई कि नहीं है? पक्की प्रवृत्ति हो गई। उस पक्की प्रवृत्ति में भगवान किसको कहे? बात तो भगवान की चल रही थी ना, किसको कहें? बच्चों को तो नहीं कहेंगे है? बच्चों के ऊपर दिल आया, किसके ऊपर दिल आया? मासूका के ऊपर दिल आया ना, मासूका के पीछे आशिक भागा भागा आया ना, दुनिया में भी क्या करते हैं है? पसंद करते हैं किसी को, तो आशिक मासू के पीछे भागते हैं या मासू का भागते हैं है? आशिक भागते हैं मासू के पीछे। तो शिव भगवान, जिसे शिव भगवान कहा जाता है, वो मासू का प्रजापति प्रजापिता, जिसे भक्ति मार्ग में प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में सारे विश्व का पति बनता है, विश्वपति बनता है कि नहीं। तो विश्वपति के पीछे पीछे भाग कर आया। तो सवाल है कि वो मासू का भगवान है या आशित भगवान है? दोनों साथ हैं, इसलिए कौन है भगवान? दोनों ही भगवान है, दोनों साथ हैं तो भगवान है। कोई प्रूफ दो पक्का, कोई यादगार बताओ। ये कोई यादगार नहीं है, है? कैसे? जल आता है जलाधारी से, जलाधारी नाम ही तब पड़ा जब उसने ज्ञान जल को धारण किया। अरे राम वाली आत्मा, जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे राम वाली आत्मा शंकर के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है या नहीं? कहा भी है। और एक गुप्त मति सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत के पावे मोर। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? है? अरे शिव ने बोला। क्या शिव ने बोला? क्या बोला? कि भक्ति तो साकार की जाती है या निराकार बिंदु की जाती है? तो शंकर किसको कहा? शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। शंकर की भक्ति के बगैर, साकार की भक्ति के बगैर मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। भक्ति सिद्ध ही तब होगी जब साकार को पहचाने। तो पहला पहला वो साकार है ही इस मनुष्य सृष्टि में, वो आत्मा जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा। तो राम के साकार शरीर को पहचाने बगैर किसी की भक्ति सफल होने वाली नहीं है। कहते हैं भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा, तो क्या ये बात तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं या उन्होंने सिखाई है कि हमारी भक्ति पूरी हो गई हमें भगवान? तो क्या ब्रह्मा कुमारियों को भगवान सच्चम में मिल गया है? नहीं मिला। माने उन्होंने शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर, उन्होंने शंकर के स्वरूप को पहचाना। शंकर माने साकार, शंकर माने लिंग, भगवान का बड़ा रूप या बिंदु रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप। बड़े रूप को अगर नहीं पहचाना तो मेरी भक्ति सिद्ध हुई नहीं। कहते हैं भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है। बाबा ने भी बोला, तुम बच्चों की जब बेसिकली देवान की कट उतरेगी तो तुम डायरेक्ट भगवान से, भगवान बाप से सीखोगे। तो यहाँ जो बैठे हुए हैं वो क्या समझते हैं क्या कि बेसिकली जो देवान की कट है वो उतरी है तब भगवान बाप डायरेक्ट अनुभव होता है या पहले ही अनुभव हो जाता है? बेसिकली कट उतरने का मतलब क्या है? बेसिकली कट उतरने का मतलब ही है जब देह की याद भूलना शुरू हो जाए और ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित होना आरंभ हो जाए। क्या? मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये स्थिति आरंभ हो जाए। सेकंड, दो सेकंड, चार सेकंड, दस सेकंड आरंभ होगा या नहीं होगा? है कुछ न कुछ स्थिरता आएगी या नहीं आएगी? तो जब जब ये स्थिरता आती है तब वो रुद्रमाला के मणके बनते हैं। क्या? रुद्रमाला के वो मणके जो निराकार आत्मा की यादगार हैं, तो प्रैक्टिकली बन गए, बनेगी नहीं तो डायरेक्ट बाप उनको मिल जाता है। उनकी बुद्धि में डायरेक्ट बाप की पहचान आ जाती है। तो देखो ये बात पक्की हो गई कि कोई कहते हैं हमें भगवान मिल गया, लेकिन भगवान जो कहते हैं सिर्फ कि हमें भगवान बाप मिल गया, उनको विदेशियों की तरह, विधर्मियों की तरह बिंदु निराकार मिल गया कि निराकार साकार का मेल मिल गया, प्रवृत्ति मार्ग का भगवान बाप मिल गया या निवृत्ति मार्ग वाला बाप मिल गया? जैसे विदेशी विधर्मी होते हैं वो साकार में जिस धर्म पिता को सर्वोपरि इस संसार में मानते हैं वो सिर्फ निराकार को जानने वाला है या साकार को जानने वाला है? जितने भी विदेशी विधर्मी धर्म पिता हैं, इब्राहिम से लेकर के और आर्य समाज तक, किसको मानने वाले हैं? निराकार को मानने वाले हैं। विधर्मी हैं, विदेशी हैं, और उनके संग के रंग में कन्वर्ट होकर के जो भारतवासी आए या आते गए उनको संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? तो वो निराकार को मानने वाले बनते हैं धर्म पिताओं की तरह या साकार को पहचानेंगे जल्दी? तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पहचाना जा सकता है क्या? है कि ब्राह्मणों की दुनिया में निराकार सो साकार को पहचानने वाले सूर्यवंशी चंद्रवंशी कौन कौन है असली? क्या असली सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी कौन कौन है? चंद्रवंशियों में भी जो निराकार साकार की प्रवृत्ति को जानने वाले होंगे, ठेठ चंद्रवंशियों में वो क्या करेंगे? चंद्रवंशी ही बने रहेंगे या चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी में आ जाएंगे? लक्ष्मी राधा चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी? चंद्रवंशी राधा, सूर्यवंशी कृष्ण। लेकिन राधा क्या करती है? चंद्रवंश को त्याग कर सूर्यवंश में आ जाती है। वही परंपरा भारत में चल रही है। क्या कन्या अपने माँ बाप के कुल को त्याग करके पति के कुल में आ जाती है तो पति का टाइटल धारण करती है या अपने बाप का टाइटल धारण करती है? हैं? पति का टाइटल धारण कर ली। पति का टाइटल ऊंचा या कन्या के बाप का टाइटल ऊंचा? क्योंकि परंपरा है भक्ति मार्ग में क्या कि कन्या की शादी करना है तो जो कन्या का बाप है अपने से ऊंचा कुल ढूंढता है या बराबर का या नीचे का? ऊंचा कुल ढूंढता है। तो ये परंपरा कहां से पड़ी? जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं, साधारण संगम में नहीं, कि सतयुग त्रेता के संगम में, त्रेता द्वापर के संगम में, द्वापर कलयुग के संगम में नहीं, जो एवर लास्टिंग संगम है दो युगों का, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, चौथे युग के अंत में, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास हर चौथी वर्ष मनाया जाता है। उस पुरुषोत्तम संगम में जब बाप आते हैं तब ये परंपरा पड़ती है। ऊंच कुल के जो ब्राह्मण होते हैं पक्के सूर्यवंशी या पक्के चंद्रवंशी, उनमें ये परंपरा आज भी चली आ रही है। और उन्हें भले त्याग दी हो, क्या जो पक्के पक्के कुलीन ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की कितनी कुरियां? नौ कुरियां मानी जाती हैं, एक से एक ऊंची है। तो ऊंचते ऊंचे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, थर्ड क्लास अच्छा माना जाता है, तो फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी, सेकंड क्लास चंद्रवंशी। तो उन ब्राह्मणों में आज भी परंपरा में क्या परंपरा चल रही है? नॉर्थ इंडिया में जाके देखो, दक्षिण भारत तो है भारत का विदेश, उसकी बात छोड़ो, क्या परंपरा चल रही है कि जो ऊंच कुल के ब्राह्मण होते हैं वो अपने से भी ऊंच कुरी के ब्राह्मणों में अपनी कन्या का है विवाह कराते हैं। उसको कहते हैं वी वाह, वी माने विशेष, वाह माने वाह वाह, हमारी कन्या कहां गई है? ऊंचे कुल में गई। बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने बहुत ऊंचा कार्य किया। क्या ऊंचा कार्य किया? जो कुलीन ब्राह्मण हैं, अपने कुल की मर्यादा का विशेष ध्यान रखने वाले हैं, उन कुलीन ब्राह्मणों में हमने अपनी कन्या को दान किया। दान किसको करना है? अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने वालों को दान करना है या भ्रष्ट कर्म करने वालों को दान करना है? और कन्या कुल में सबसे जास्ती जो पावर है, सबसे जास्ती जो सत्व है, सबसे जास्ती जो सार है परिवार का, वो परिवार के कौन से भांतियों में सार होता है? हैं? बच्चे में, बाप के भाइयों में, या कोई भी भांति में, या कन्या में? हैं? कन्या में प्योरिटी की पावर जास्ती होती है। तो जिसमें जास्ती पावर है, सत्व की कहो, सतीत्व की कहो, सत्त कहो, ऐसी सत्त वाली चीज को दान करना बहुत श्रेष्ठ है या नीचे है? हाँ, सबसे ऊंचा दान माना जाता है क्या? कन्यादान। तो देखो, बात तो यहां चल रही थी कि परम ब्रह्म जो पहला ब्राह्मण बनता है, उसने किसके मुख से सुना? मुख से सुने तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। किसके मुख से सुना? कोई बड़ी माता थी, बड़ बोली, उसके मुख से सुना। तो पक्का ब्राह्मण बना? बना है? बना नहीं? बना कैसे? परम ब्रह्म ने,
जिसने सुना,
ब्रह्मा ने सुना। शिव बाप आया तो किसके मुख से? सुनने वाले ने, दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों को पहली बार सुना और धारण किया, समझा और सुनाया भी, व्याख्या भी की। प्रजापिता वाली आत्मा ने सुना, लेकिन सुना किसके मुख से? कोई बड़ बोली माता थी, उसके मुख से सुना। सुना तो, लेकिन उस सार की बात को सुन करके जीवन में पूरा अमल में लाया? कैसे साबित करेंगे? है? राम फेल हो गया। सिर्फ मुख से सुना तो क्या हुआ? रिजल्ट फेल हो गया या पास हो गया? फेल हो गया। एक दूसरी माता भी थी, तीनों आत्माओं के साथ शिव आता है ना, तीन मूर्तियों के साथ आता है ना, कि एक मूर्ति के साथ आता है? असल ब्रह्मा भी था, असल वैष्णवी शक्ति भी थी, और शंकर भी था। जो ब्रह्मा होता है उसे विकारी दिखाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, या निर्विकारी दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ वाला विकारी दिखाएंगे। विकारी जो ज्ञान सुनाएगा जीवन में, प्रैक्टिकली शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करेगा विकारी कर्म करेगा तो उसे ज्ञान को धारण करने वाला पक्का ब्राह्मण कहेंगे। तो किस मुख से सुना? है किस मुख से सुना? जगदम्बा के मुख से सुना, जगत माता के मुख से सुना। जगत, जगत किसको कहा जाता है? 500-700 करोड़ को जगत कहा जाता है। 500-700 करोड़ को जन्म देने के निमित्त जो बनती है, तो जिनको निमित्त बनती है उनके संग के रंग में भी आना पड़े या नहीं आना पड़े? है आना पड़े। तो सारी जगत की जो भी आत्माएं हैं उनकी जन्मदात्री जो शास्त्र में भी कहा जाता है सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद, तो वो मूल ब्रह्मा कौन हुआ? ब्रह्म माँ, बड़ी माँ, जगत माँ, एक ही बात है अलग अलग है? तो मूल ब्रह्मा कौन हुआ? आदि ब्रह्मा, उस हिसाब से किसको कहें? पिता नहीं, माता है। कौन सी आत्मा को है? कौन सी आत्मा जिसने सिर्फ बोल बोल किया समझा नहीं? समझा नहीं तो प्रैक्टिकल कर्म में किया भी नहीं। बोल बोल करके बोल दिया और उस बोले हुए महावाक्यों को, महावाक्य तो नहीं कहें, वाक्यों को पहले पहले किसने सुना और किसने धारण किया और किसने सुनाया? प्रजापिता ने सुना, धारण किया और सुनाया भी तीन मूर्तियों के बीच में। तो जिसने धारण किया वो पहला ब्राह्मण बना, जिसके लिए गायन है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। गायन भी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। नहीं है, है, है? अरे पहला है, नंबर वन है, वैश्यों में नंबर है, नंबर वन है, तो सबसे बड़ा विशेष हुआ कि नहीं? है क्षत्रियों में नंबर वन है, तो सबसे बड़ा योद्धा हुआ कि नहीं? और शूद्रों में सबसे नंबर वन है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र हुआ कि नहीं? नीचे पतित से पतित तमो प्रधान, तो हुआ ना चारा युग प्रताप तुम्हारा। तो वो आत्मा जो पहला ब्राह्मण है वो प्रसिद्ध हो गई। और उस पहले ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? है ब्राह्मण किसे कहें? जो ज्ञान लेता हो और ज्ञान देता। ब्राह्मण का काम क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ये झूठ का, सत्य का ज्ञान लिया पहले पहले कौन सी मन बुद्धि रूपी आत्मा ने साक्षात्कार का सत्य ज्ञान धारण किया है? धारण किया, धारण करेगा तब तो मनन चिंतन मंथन करेगा है, और मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाएगा तो दूसरों को सुनाएगा कैसे? सुनाएगा? सुनाएगा ही नहीं। तो ज्ञान को धारण तो किया, सुनने सुनाने के लिए धारण किया, लेकिन क्या जरूरी है कि प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए भी धारण किया है? किया? अगर किया होता तो राम फेल नहीं होता। राम फेल हुआ या नहीं हुआ? राम फेल हुआ, फेल तो हुआ, लेकिन क्या राम अकेला ही फेल होता है? माया किसी को छोड़ती है क्या? है? नहीं छोड़ती। और छोटे एग्जाम में फेल हुआ या फाइनल एग्जाम में फेल हुआ? फाइनल एग्जाम तो अभी भी नहीं हुआ। तो जब फाइनल एग्जाम ही नहीं हुआ तो फेल होना न होना बराबर हो गया। अब सवाल ये है, बड़ा बोली माता के मुख से सुना है ना, बोल बोल में जो अव्वल नंबर थी यादगार क्या है? है? क्या यादगार है? लंबी जीव। कहते हैं अरे इसकी जीव तो बड़ी लंबी है। लंबी जीव का मतलब क्या है? बहुत बोल बोल करती है, बोल बोल करके सबको जीत सकती है। क्या बोल बोल में इतनी होशियार कि सबके ऊपर जीत पा लेती है। गुरु लोग क्या करते हैं? बोल बोल करते हैं, जीत पाते हैं कि नहीं? सबके ऊपर जीत पाते हैं ना, जो सुनते हैं सब कहते हैं सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निधान सत्य है, दया निधान कहते हैं कि नहीं? तो उन गुरुओं में सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन हुआ दुनिया में है? ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा बाबा बोल बोल करके वेदवाणी सारी दुनिया को जीत लिया क्या कि लिमिटेड ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही जीत पाया है? लेकिन वो आत्मा कौन है जो एक टाइम ऐसा आता है जो सारी दुनिया को जीत लेती है, राज करेगा खालसा? कौन है? है जगदम्बा। जब महाकाली का पाठ बजाती है तो इस दुनिया में टाइम कौन सा होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या कलयुग का भी अंत है? कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्माएं, सभी धर्म की आत्माएं अतितम प्रधान हो जाती हैं, अति पतित बन जाती हैं, राक्षस स्वभाव की बन जाती हैं या देवताई स्वभाव रहता है? सब दुखदाई बन जाते हैं राक्षस संप्रदाय कि कोई देवात्मा रहता है, हैं? और महाकाली क्या करती है? किसका सर काटती है? हैं? राक्षसों का सर काट देती है। तो सब राक्षस हैं तो सभी का सर काटती है, सभी को मार डालती है, कि कोई को मारेगी कोई को छोड़ देगी है, छोड़ देती है, सांप को मार काट के बराबर कर देती है। बेहद में या हद में? बेहद में कैसे हैं? हाँ, जिनको जिनको भगवान बाप का निश्चय होता है, भगवान बाप के बच्चे बनते हैं, कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, मन बुद्धि अनुभव करती है कि हम बाप के बच्चे बन गए, निश्चय बुद्धि बनते हैं, उन निश्चय बुद्धि बने हुए बच्चों को क्या कर देती है, हैं? अनिश्चय बुद्धि बना देती है, खांडे से, छुरी से नहीं, छुरी चलाना माया का काम है, तलवार से भी नहीं, उसकी तलवार कैसी होती है, हैं? चौड़ी धार वाली होती है के पतली होती है, हाँ, खांडे से सबका सर काट देती है। वो खांडा बोल बोल करने वाला खांडा है या ज्ञान की धार वाला खांडा है? बोल बोल करने वाला धार खांडा है। वो बोल बोल रेडियो के द्वारा सुनने को मिलेगा, मिलता है, टीवी चैनल्स के द्वारा सुनने को मिलता है, बोल बोल, इंटरनेट के द्वारा सुनने को मिलता है, नेशनल टीवी के द्वारा सुनने को मिलता है, अखबारों के द्वारा सुनने को मिलता है, तो मीडिया की आवाज सारी दुनिया में पहुंचती है कि अंत समय में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी या बढ़ती जाएगी, तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र में आम जो मनुष्य हैं वो सुनी सुनाई बातों पर, मीडिया की बातों पर, अखबार की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और खास भारतवासी, उनकी क्या कमजोरी है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। यज्ञ के आदि में भी दुर्गति पाई थी, और आदि में भी मूल सुनाने वाली कौन थी, ऐसे नहीं दादा लेखराज ब्रह्मा धोबी घाट की बात को न समझ पाने के कारण जब बाहर की दुनिया में हो हल्ला मचा तो झगड़ा देख करके भाग खड़े हुए, पहले पहले नहीं, वो तो भाग खड़े होने वाले थे लेकिन झगड़े के बीच में बड़ा पार्ट किसने बजाया होगा, बड़ा पार्ट बजाएगा वो जीतेगा या हारेगा, हैं? जीतता है या हारता है? हारता है, बड़ा पार्ट बजाने वाला जीत जाता है, राम वाली आत्मा जीत गई, खेल हो गई। उस समय जो वितंडावाद फैला बोल बोल का सिंध हैदराबाद में, कोर्ट द्वारा, अखबारों द्वारा और दुनिया के साहूकार बड़े बड़े लोगों के द्वारा एंटियोम मंडली के रूप में जो विरोध हुआ उसका मुखिया कौन था? क्या विरोध की शुरुआत कहां से हुई? ये विघटन की शुरुआत ओम मंडली में कहां से शुरू हुई? बाबा ने क्या बोला? बाप दादा ने बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? बाबा नहीं, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। पहला नाम किसका आया? ब्रह्मा। झगड़े का कारण क्या होता है ब्राह्मणों की दुनिया में है? और वैसे भी बाहर की दुनिया में आम कारण क्या है, खास भारतवासियों में झगड़े का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी, अपवित्रता, व्यभिचार। एक है भारत माताएं, एक है जगत माताएं, एक है भारत माता और एक मूल है जगत माता। कौन सी व्यभिचारिणी होगी? क्योंकि जगत में विश्व धर्म फैले हुए हैं, विश्व धर्मों की आत्माओं को जन्म देने वाली जगत माता हुई। और सिर्फ सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों को सपोर्ट करने वाली भारत माता हुई। भारत, भा बने ज्ञान की रोशनी में, रत बने लगी हुई। जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगी हुई है, प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से भी, मन से भी और वाचा से भी। मन से वाइब्रेशन की पावर बनती है, वाचा से बाहरी आवाज की पावर बुलंद होती है और कर्म इंद्रियों से पाप पुण्य बन जाता है। जो पद को नीचे गिराता है तो यज्ञ के आदि में दोनों ही माताएं थी। जो बड़ बोली माता थी उसने सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला या समझने समझाने का भी फाउंडेशन डाला? सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला। ये सुनना सुनाना भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। बाप जो आत्माओं का बाप है सर्वोपरि, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, वो ऊंचा काम करेगा या भक्ति मुर्दाबाद या जिंदाबाद क्या करेगा? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद करने का काम करता है और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करने का काम करता है। तो दो पावर हुई दुनिया की, सब प्रकार की पावर एक से आती है या अनेकों से आती है? है एक से ही आती है, पॉजिटिव भी एक से ही आता है और नेगेटिव भी एक से आता है। माया नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और इतनी बुलंद नेगेटिव है किस आधार पर? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। निगेटिविटी में भी इतनी हिम्मत करती है कि 5000 वर्ष की दुनिया में से 2500 वर्ष का राज्य ले लेती है। लेकिन गिरती कला का राज्य ले पाती है या चढ़ती कला का राज्य ले पाती है? गिरती कला का राज्य ले पाती है। उठती कला का राज्य क्यों नहीं ले पाती? है माया किसी को नहीं छोड़ती, सबको फेल कर देती है। कमजोर हो जाती है, हार खाने लगती है, नाक रगड़ने लगती है युद्ध करते करते। तो युक्ति अपनाती है, है? बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान बच्ची है या बुद्धू है? बुद्धिमान बच्ची है। तो क्या युक्ति अपनाती है कि इस दुनिया में जितनी आत्माएं हैं उनमें से ऐसी आत्मा को चुनती है जो भगवान बाप की प्रकृष्ट रचना प्रकृति है। प्रमाणे प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना क्यों कहा है? कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम कौन करता है? प्रकृति करती है। बड़े बड़े धर्म पिताएं इस दुनिया में आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। पुरानेपन को नाश किसी ने नहीं किया, पुराने धर्मों का विनाश किसी ने नहीं किया, पुराने राज्यों का विनाश किसी ने नहीं, पुरानी परंपराओं का विनाश, गंदी गंदी परंपराओं का विनाश किसी ने नहीं किया। सारी दुनिया का जो तमो प्रधान बन जाती है उसका विनाश किसी ने नहीं किया। कौन निमित्त बनता है? है माया तो बेचारी हार खाई जाती है, भले हिम्मत नहीं हारती। क्या जैसे साइकिल पर सवार बार बार गिरता है, बार बार जमीन से नाक रगड़ जाता है, तो क्या साइकिल की सवारी छोड़ देता है? है हिम्मत करता है ना। तो ऐसे ही माया हिम्मतवान तो बहुत है, हिम्मत के आधार पर उसे सब शक्तिवान बाप से क्या मिलता है? हैं? हिम्मते बच्चे, भगवान बाप से मदद तो मिल जाती है, और उस मदद के आधार पर सारी दुनिया से टक्कर लेती है। लेकिन किससे हार जाती है? हैं? लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। लक्ष्मी तो सहज सहज मान लेती है पति, मायापति भी कहा जाता है, है? मायापति कहा जाता है कि नहीं? माया बेटी कहते हैं, है? बेटी कन्या होती है, माता होती है, कन्या होती है। कोई कोई कन्या ऐसी होती है कि अंदर अंदर से तो दिल चाहता है कि ये हमारे ऊपर पूरा अधिकार कर ले, लेकिन बाहर से लाल लाल आंखें दिखाती है। ऐसे होता है कि नहीं है? तो कैसी बेटी हुई? माया बेटी हुई, अंदर एक और बाहर दूसरा। तो ऐसी है माया बेटी, है तो बेटी बाप की, लेकिन बाप पर ही फिदा होने वाली है या किसी और के ऊपर फिदा होने वाली है? हाँ, बाप के ऊपर ही फिदा होती है। तो माया बेटी हुई या नहीं हुई? हैं? माया बेटी हुई ना। तो वो माया बेटी में युद्ध करने के बावजूद भी इतनी ताकत नहीं है जो बाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि रचना में ज्यादा ताकत होती है या रचयिता में ज्यादा ताकत होती है? तो रचयिता बाप, बाप कहो पति कहो, वो भगवान क्या है? सर्वसंबंधी है या कोई एक दो संबंधी है? सर्वसंबंधी है। यो यथा माम प्रपद्यते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप से स्वीकार करता है मैं उसको उसी रूप में मिल जाता हूं। गीता में क्या बोला? भगवान सबके दिल की आस पूरी करता है। मुरली में भी बोला ब्रह्मा के मुख से, भगवान बाप आते हैं तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो। तो बाप आते हैं, माया की भी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि वो सर्व संबंधी है या सिंगल संबंधी है? सर्व संबंधी। तो वो प्रकृति जो प्रकृष्ट रचना है बाप की, तो बड़ी बेटी होगी या छोटी बेटी होगी? है बड़ी बेटी। जैसे बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है, ताकतवर कहा जाता है, दादा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत दादागिरी दिखाता है। तो ऐसे ही बड़ी बहन भी क्या हुई? माता समान हुई, तो पावरफुल हुई ना। तो जो प्रकृति प्रकृष्ट रचना है भगवान बाप की, वो प्रकृष्ट रचना प्रकृष्ट कार्य भी करके दिखाती होगी ना? हा? नहीं करती है। दुनिया में जो काम कोई भी नहीं कर सका, अपने अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना भी करते हैं, अपनी अपनी भाषाएं भी चलाते हैं, अपने कुल की मर्यादा भी स्थापन करते हैं, लेकिन जब वो राज्य, जब वो धर्म पुराना होते होते तमो प्रधान हो जाता है तो उसका विनाश कोई नहीं कर पाते, और वो कार्य कौन करती है? प्रकृति करती है। प्रकृति कहा जाता है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांच तत्वों के संघात को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो भगवान बाप की पांच तत्वों के संघात वाली वो प्रकृष्ट रचना है। कैसी प्रकृष्ट? जब सत्व प्रधान बनती है तो उससे ज्यादा सुख दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। और जब तमो प्रधान बनती है तो उससे ज्यादा दुख दुनिया में और कोई भी देने का निमित्त नहीं बन सकता। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन भगवान बाप तो मुरली में कहते हैं शंकर क्या करता है? शंकर तो कुछ भी नहीं करता। वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, इंद्रियां बांध करके, हो सके ऊपर दोष लगा दिए। अरे भगवान बाप का बड़ा बच्चा है और छोटे बच्चों में से है, है? वो भगवान अच्छा तो भगवान का बड़ा बच्चा भी अच्छा ही होगा या खराब होगा? अच्छा ही होता है। तो भगवान बाप बड़े बच्चे को अपनी सारी जायदाद, अपना सारा वर्षा सौंपता है। हिस्ट्री में क्या देखा? राजाओं ने यथा राजा तथा प्रजा ने क्या किया? अपने बड़े बच्चों को अपनी सारी धन संपत्ति का स्वामी बना दिया। तो भगवान बाप अपने बच्चे के ऊपर लांछन आने देंगे? हैं? अगर शंकर विनाश करे प्रैक्टिकल में, तो शंकर के ऊपर दोष आएगा या नहीं आएगा? दोष माने पाप का भागी बनेगा या नहीं बनेगा? हैं? और पाप का भागी बनेगा तो जो पाप के भागी बनते हैं वो भगवान का जो लिया हुआ लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे? हैं? नहीं कर सकते। नारी से लक्ष्मी जन्म जन्मांतर की अभिविचारिणी इंद्रियों से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने वाली बनेगी या विविचार का भ्रष्ट कर्म करने वाली बनेगी? तो लक्ष्मी, लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, उसकी ये धारणा होती है। नारी है तो उस नारी की अव्वल नंबर धारणा क्या होगी जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में? मुझे नारी से लक्ष्मी बनना है, और बनती भी है। और जगदम्बा नारी नहीं होती है? हा? नारी नहीं है, नारी है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। क्यों? जब पावरफुल है तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकती? है? अरे माया को जो सहयोग देगा, माया से हाथ मिलाएगा, जो माया भगवान बाप से भी दुश्मनी कर लेती है, लड़ जाती है, तो भगवान बाप से लड़ाई लड़ने वाला उसकी शक्ति क्षीण होगी, या बढ़ेगी? रामायण में भी प्रसंग आया है, क्या प्रसंग आया है? बाली का, उसे वरदान मिला हुआ था क्या, जो मेरे सामने होकर युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत मेरे में आ जाएगी। और मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। क्यों है? बाप का अगर सामना किया तो सामना करने वाली जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उनका भी बाप कौन, कोई है या नहीं है? बोलते भी हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या मतलब हुआ? माना अच्छाई में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है और बुराई में भी तुम्हारा बाप आया। कल्याण का काम करोगे तो भी तुम्हारा बाप, और अकल्याण का काम करोगे, दुख का काम करोगे तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो माया बेटी का भी वो बाप है जो दुश्मनी बाप से लेती है, युद्ध करती है आदि से अंत तक। और माया बेटी हाथ मिलाती है प्रकृति से, और प्रकृति जड़ बुद्धि है, जड़तुमयी है या चैतन्य बुद्धि है? तो बुद्धू क्या करती है, हैं, माया से हाथ मिलाई लेती है। है भगवान बाप की प्रकृष्ट रचना, क्योंकि क्यों प्रकृष्ट रचना है, प्रैक्टिकल में है या हवा में कहने मात्र? कैसे है? नहीं, प्रकृष्ट रचना इस हिसाब से है कि जितनी प्रैक्टिकल जीवन में संबंध जोड़ने की ताकत प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से जगदम्बा धारण करती है, उतना और कोई भी आत्मा लंबे समय तक प्रैक्टिकल में जो बड़ी प्रबल है विकार की शक्ति है, सुख भोगने वाली काम इंद्रिय की शक्ति, वो और कोई मनुष्य आत्मा धारण नहीं करती है। प्रैक्टिकल देखने में आता है या नहीं आता है? तो जिसने लंबे समय तक बाप की कहो, पति की कहो, जगदम्बा ने, जगत माता ने, जगत पिता की प्रैक्टिकल में शक्ति धारण की है, प्रैक्टिकल शरीर से होता है, शरीर की कर्म इंद्रियों से होता है या बिना शरीर बिना कर्म इंद्रियों को होता है? तो प्रैक्टिकल पावर धारण करने वाली ने वो ताकत धारण कर ली है। कितनी ताकत है कि बाप ने लंबे समय की अपनी प्योरिटी की पावर को क्या किया है, पहले पहले किसको अर्पण कर दिया? एडवांस ज्ञान की बात है, आदि की बात है तो अंत की बात है, आदि और अंत की बात है तो मध्य में भी वही बात है, आदि में भी प्रजापिता और दादा लेखराज ब्रह्मा कहां के वासी थे? दोनों हैं? शिव बाप आते हैं तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप धरणी है कहां बीज डालते हैं जो यहां यादगार बनता है? क्या यादगार है? बड़ा का बीज वृक्ष, वो कलकत्ते में है, बड़े ते बड़ा वृक्ष। उस बड़े ते बड़े वृक्ष का बीज है छोटे से छोटा होता है या बड़ा होता है? बीज छोटा, जितना छोटा जितना अणुअणियां सम्मणुरूप उतना पावरफुल, विस्तार को धारण करता है तो दुनिया के जितने भी वृक्ष हैं उन सबसे बड़ा हो जाता है या छोटा रहता है? ये षष्ठी रूपी वृक्ष है मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष। तो वो बीज कौन सी धरणी में पड़ता है पहले पहले? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? पंजाब की धरणी है। तो पंजाब में बनियन वृक्ष होना चाहिए, कहाँ है? भगवान बाप की अवतरण भूमि कहाँ बताई है? कलकत्ता। अंत में कलह क्लेश कट्टा, तो नाम पड़ा कलकत्ता। तो जहां अंत वहां आज भी हुआ होगा। तो बताओ जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो कहां का रहवासी होगा? कलकत्ते का रहवासी। पूर्वी सभ्यता का या पश्चिमी सभ्यता का रहवासी? पूर्वी सभ्यता का रहवासी। जो बहुत ऊंचा होता है वो बहुत नीचे भी गिरता है या नहीं गिरता है? तो दुनिया के शहरों में कौन सा ऐसा शहर है जो वैश्यावृत्ति के लिए सबसे ज्यादा हिस्ट्री में प्रसिद्ध हुआ? कलकत्ता। अपनी सुंदर पत्नी होते हुए भी, सुनीति बयान पत्नी होते हुए भी और सुंदर पत्नियों को धारण करता है और उनसे जास्ती संबंध जोड़ लेता है। तो पावर कहां गिरेगी है? वही गिरेगी ना। तो उन कलकत्ता वासियों में, कलकत्ते में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर आत्मा कौन होगी? कलह क्लेश इकट्ठा करने का लिए जिसके ऊपर लकब लगा हुआ है, सारी दुनिया का निमित्त विनाश का बन जाता है, गाया कौन जाता है? है दुनिया में कोई जानता है कि महाकाली के द्वारा विनाश होगा? है दुनिया में सब क्या कहते हैं? शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा जो विनाश होता है इस कारण वो शंकर वाली आत्मा संकरण का काम करती है। क्या? संकरण, निश्चयती का काम कर देती है दुनिया में सबसे जास्ती, विविचारी बन जाती है। और कोई तो आत्मा होगी जिसके साथ वो सबसे जास्ती संकरण का काम करे। कौन होगी? अरे जगदम्बा। तो आदि में भी थे और अंत में भी वही निमित्त बनती है। आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश करने का कारण कौन बने है? जगदम्बा। विनाश का कारण, विघटन का कारण क्या होता है? है इम्प्योरिटी। जहां वैश्यावृत्ति होती है तो वैश्या ऊंच को देखती है, बुद्धिमान को देखती है या लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गोरे चिट्ठे को देखती है? ज्यादा प्यार किससे करेगी? वैश्या देहवान वाली होती है कि आत्माभिमान बुद्धिमान वाली होती है? वैश्या वाली होती है, वैश्यावृत्ति वाली, देहवान वाली होती है। देह का सुख जो ज्यादा दे उसको ज्यादा पसंद करेगी। तो पता चला यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कैसे? कौन भी विचार का निमित्त बना है? पहल किसने की है? हाँ, पहल की। वो पहल करने के कारण मुसलमानों में आज भी ये गायन है। क्या है कि भगवान ने जब जन्नत रची अल्लाह मियां ने तो ऑर्डर दिया आदम और हव्वा को, नाम क्या दिया? हव्वा। माताएं जब बच्चे को डर पाती हैं तो क्या कहती है? अरे हव्वा आ जाएगा। डर पाती है कि नहीं? तो बड़े से बड़ा हव्वा कौन हुआ है? जगदम्बा। वो जगदम्बा निमित्त बनती है, ऐसे ही नहीं हव्वा बन गई। काहे की निमित्त बनती है? है ए आई बीबी भागो, ए माने आध्यात्मिक, आई माने ईश्वरीय, बीबी माने विश्वविद्यालय। उसका फाउंडेशन डालने के निमित्त कौन बने है? ऐसे तो 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया गया, लेकिन क्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम पड़ा है? नहीं पड़ा ना। कब नाम पड़ा? जब अरे प्रवृत्ति मार्ग की चाहे श्रेष्ठ प्रवृत्ति मार्ग हो और चाहे भ्रष्ट प्रवृत्ति मार्ग हो, फाउंडेशन तभी पड़ेगा जब स्त्री पुरुष दोनों मिले तब ना है। तो नाम कब से उजागर हुआ? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शार्ट रूप AIBB। अर्थ निकालो तो बनेगा AIBB। भागो। उस विद्यालय के जो खास फॉलोअर्स बनते हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में, उनकी भक्ति मार्ग में भी यादगार बनती है उस संगठन की। हाँ, वो भी एक तो नेपाल से वो यादगार बनी माओवादी, ओ मामने अम्मा वादी मने बादी ओ अम्मा वादी किसकी बात करने वाले अम्मा की बात करने वाले ओ माओवादी अभी नेपाल में किसका राज्य चल रहा है ओ माओवादी ने सिक्का जमा लिया क्या वेद के नेपाल वेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले ब्राह्मण हैं उस दुनिया का भी जो संगठन की संगठन की जमात दिखाई पड़ती है उसमें जाति भरमार हो गई है उन लोगों की जो महाकाली की भुजाएं बनने वाले हैं क्या देखने में तो आते हैं कि भगवान बाप को सरेंडर हो गए लेकिन कागज में सरेंडर हुए मन बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है और ऐसों की संख्या ज्यादा है या कम है बहुत ज्यादा है बाहर की दुनिया में बुद्धि ही नहीं मन ही नहीं तन से भी आपस में लगाव झुकाव में आते रहते हैं ये फाउंडेशन बेसिक से ही चल रहा है बेसिक में भी बाबा बोलते थे क्या बच्चियां आपस में बहुत लगाव झुकाव में आ जाती है तो बेसिक रूप छोटा होता है और एडवांस बड़ा रूप होता है तो एडवांस में लगाव झुकाव में आने वाले भी एडवांस हैं तो भगवान बाप को छोड़ करके आपस में लगाव झुकाव में आने लग पड़े तो विभिचारी हुए मन बुद्धि रूपी आत्मा विभिचारी बनी या लक्ष्मी की तरह अब विभिचारी बनी क्या सूटिंग होगी महाकाली की भुजाएं बनेंगी या भारत माता लक्ष्मी की भुजाएं बनेंगी तो वो महाकाली की भुजाएं एडवांस पार्टी में ढेर की ढेर बन रही है इसलिए बाबा को बोलना पड़ा क्या जो विभिचारी धर्म होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है कि अविभिचारी सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की संख्या ज्यादा है जो विभिचारी धर्मों में भारत के देवता सो हिंदू बनने वाले कन्वर्ट होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है या जो कल्प वृक्ष के सीधे तने में ऊपर जाते हैं न दाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं न बाई ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनकी संख्या ज्यादा है दाएं और बाएं धर्मों में जो विधर्मी विदेशी हैं उनमें कन्वर्ट होने वाले आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके बीज कहाँ है? हैं कहाँ है ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं में वो आत्माएं भरी पड़ी हैं जो विचारी दृष्टि वृत्ति वाली है सिर्फ दृष्टि वृत्ति वाली नहीं कर्मेंद्रियों से भी कर्म में आ जाते हैं तो विचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगे या रह जाएंगे जैसी शूटिंग करते हैं वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे है, उनमें कन्याओं की ही बात नहीं है, माताओं की भी बात है। दुनिया के सामने कहती है हमें पति परमेश्वर बड़े ते बड़ा भगवान बाप मिल गया, वो हमारा बाप भी है, हमारा पति भी है, हमारा सर्व संबंधी है। लेकिन दिल से पूछें, क्या प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से कोई और से संबंध तो नहीं जोड़ती है? और चलो कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़ती है, लेकिन मन बुद्धि का तो लगाव नहीं होता है सुख भोगने में। विकारी इंद्रियों से सुख भले भोगती है, लेकिन मन बुद्धि का लगाव तो नहीं होता है। मन बुद्धि बाप की याद में रहती है तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाप ने बताया है क्या, कर्मधारा बगैर तो रह नहीं सकेंगे। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते भी क्या करना है, बाप की याद में रहना। इसलिए छूट दे दी, वाणी में ही बोल दिया कि हाथ पांव पाती से बांधें, फिर भिखारी बनाए। मना, तुम अपने तन की पूरी ताकत लगा दो, भिखारी सुख न भोगने के लिए, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। अच्छा, बाहुबल का युद्ध न कर सको तो बाहुबल की जो इंद्रियां हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल इंद्रिय कौन सी है, मन को तो उस टाइम बाप की याद में लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है? ये काम कन्याएं माताएं ही कर सकती हैं। कोई पुरुष दुर्योधन दुशासन जिनको लकब भगवान ने दिया है वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए कन्याओं माताओं को शिव शक्ति का टाइटल मिला हुआ है। किसकी शक्ति? एक शिव की शक्ति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दृष्टि में भी, वृत्ति में भी और कर्म इंद्रियों में भी लगाव लगाना है तो किससे, अटैचमेंट लगाना है तो किससे, एक बाप दूसरा न कोई। तो ऐसी कन्याएं माताएं चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो, वो कन्वर्ट होने वाली नहीं बनेंगी। क्या सीधे सीधे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मुख्य तना है ऊपर जाने वाला, उसी में रहेंगी जन्म जन्मांतर। नहीं तो या तो दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट होंगी या तो बाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो किसकी भुजाएं बनेंगी बाईं ओर की डालियों में, दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट होने वाली, झुक जाने वाली हैं? जगदम्बा की भुजाएं बनेंगी, लक्ष्मी की भुजाएं नहीं बनेंगी। उस राज्य में नहीं आएंगी जो सर्वोपरि राज्य और सर्वोपरि धर्म है, अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म कहा जाता है। कन्वर्टेड धर्मों में चली जाएंगी। तो जगदम्बा भी अकेली नहीं है और लक्ष्मी भी अकेली नहीं। जो जगदम्बा की भुजाएं हैं उनकी यादगार भक्ति मार्ग में है ओम माओवादी माओवादी और अभी अंत में जोर शोर से एक धर्म निकला है काले कपड़ों वाला खास दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी बच्चों का अप्पा जब क्रोध में आता है धाड़ पार सड़ों के लगाता है तो मुंह से क्या निकलता है अय्यप्पा स्वामी तो ये जगदम्बा की भुजाओं की यादगार है ऐसे नहीं समझना कि उसमें कन्याएं माताएं ही हैं सरेंडर होने वाली कन्याएं हैं और नॉन सरेंडर माताएं हैं पुरुष भी होंगे या नहीं होंगे हैं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो भी हैं अब वो सब पुरुष ही पुरुष हैं रुद्रमाला के मण के पुरुष ही पुरुष हैं या स्वभाव संस्कार से स्त्री भी है पुरुष ही पुरुष तो देखो ये नंबर दो की माता हुई संसार में जो प्रथम पुरुष है कौन प्रथम पुरुष कौन है है जगदम्बा प्रथम पुरुष है प्रजापिता उसकी पहली पत्नी है जो शास्त्रों में भी गायन है कांपिल्य नगर का ही गायन है पहली पत्नी है सुनीति सु माने सुंदर नीति माने सुंदर नीति नियम पर चलने वाली सुंदर नीति नियम भगवान के सिखाए हुए होंगे या किसी और आत्मा के भी हो सकते हैं भगवान के ही हो सकते हैं तो भगवान के सिखाए हुए नीति नियमों पर चलने वाली सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम नंबर दो की पत्नी नंबर दो का माल अच्छा या नंबर वन माल अच्छा नंबर दो की पत्नी का नाम था सुरुचि सु माने स्व अपना अपनी रुचि माने रुचि पूर्वक अपनी इच्छा पूर्वक चलने वाली स्वेच्छाचारिणी माने अपनी इच्छा से चलने वाली पति से पूछे या न पूछे कोई सवाल ही नहीं चलेगी अपनी इच्छा से स्वेच्छाचारिणी वो थी सुरुचि वो सुरुचि हाँ तो राज्य किसको मिला सुनीति के बच्चे को राज्य मिला या सुरुचि को बच्चे को राज्य मिला है किसको मिला सुनीति का जो बच्चा था वो भगवान का भक्त था और सुरुचि का जो बच्चा था वो अपने बाप का भगत था देहधारी का तो ऐसे ही यहां है जो देहधारी बाप इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं देह अभिमानी बाप उनके धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो किसके बच्चे हुए देहधारी बाप के बच्चे हुए या निराकारी बाप के बच्चे हुए देहधारी बाप है देहधारी बापों के बच्चे हुए देह अभिमानी बापों के बच्चे हुए और जो निराकारी बाप हैं उसके बच्चे कौन हुए जो सुनीति से पैदा हुए सुंदर नीति नियम पर चलने वाली माता से जन्म लिया वो सुनीति के बच्चे हुए ध्रुव क्या नाम ध्रुव ध्रुव पद वाले क्या उनका पद क्या है? ध्रुव है, निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मातेले हैं या सौतेले हैं? मातेले हैं, असली माता के अब्बल नंबर माता के बच्चे हैं। लक्ष्मी की औलाद हैं या जगदम्बा की औलाद हैं? लक्ष्मी की औलाद। शास्त्रों में दूसरा नाम भी दिया है, दिति और अदिति। क्या पहला नाम तो कंपिला के राजा उत्तानपाद का नाम दिया, उत्त माने ऊपर। क्या उत्त माने ऊपर, तान माने तान दिया। उत्त माने ऊपर, तान माने तान दिया, पाद माने पांव। जिस राजा ने ऊपर परम धाम की ओर, ऊंचे ऊंचे धाम की ओर अपने बुद्ध रूपी पांव को तान दिया, लटकाई दिया, उसका नाम क्या पड़ा? उत्तानपाद राजा। अब बताओ जगत पिता जगदम्बा में से कौन है जो अपने बुद्ध रूपी पांव को ऊपर की ओर लटकाए देता है? भक्ति मार्ग में उसके चित्र भी बने हुए, चेहरे को ध्यान से देखो, आंखें, मन बुद्धि रूपी आत्मा चेहरे को देखने से ऊपर लटकी हुई है या नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है। तो एक मिसाल तो ये शास्त्रों में दिया, दूसरा मिसाल कश्यप की पत्नी का दिया। कश्यप माने तेज, योग का, पा माने पीने वाला, कौन? योग का तेज पीने वाला, जिस काशी शब्द से बनती है काशी। काशी माने याद के तेज को पीने वाला, पीने वाली आत्मा। बाबा ने नाम क्या रखा? याद को, तेज को पीने वाली आत्मा का नाम क्या रखा है? योगिनी। योगिनी, फिर योगी राज कौन? योगेश्वर कौन है? शंकर को योगेश्वर कहा जाता है। तो उसकी पहली पत्नी, उसका नाम है क्या? नाम हुआ किसको फॉलो करने वाली है? योगिनी को फॉलो करने वाली, माना किसको सपोर्ट करेगी? नहीं, योगिनी को सपोर्ट करने वाली। योगिनी का शास्त्रों में दूसरा नाम है, जिसका योग एक से लगा होगा वो ईर्ष्या द्वेष वाला होगा है? नहीं होगा। तो शास्त्रों में उसका दूसरा नाम है अनुसूया। अन माने नहीं, असूया माने द्वेष। वो राग द्वेष वाली नहीं है। राग द्वेष से झगड़ा पैदा होता है या नहीं? झगड़ा पैदा होता है, उसका मूल कारण क्या है? झगड़े का मूल कारण क्या होता है? है इम्प्योरिटी। तो उस अनुसूया में जब संपन्न स्टेज प्राप्त करती है तो नाम मात्र का भी ईर्ष्या द्वेष 63 जन्मों में भी नहीं रहता। ऐसी अनुसुईया त्रिदेवियों की गुरु कहो, माता कहो, सासू माँ कहो, उनके पतियों को पालने वाली कहो, बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो नाम दिया कश्यप, काश्य रूपी योग को पीने वाला मनशंकर, और उसकी दो पत्नियां प्रसिद्ध है, दिति और अदिति। दिति का अर्थ है फटा हुआ और अदिति का अर्थ है, है जो अखंड है। खंडित हो गई, विभिचारिणी बन गई तो दिति, और अखंड रही तो अदिति। जो अखंड रही पवित्रता में, उससे देवताओं का जन्म हुआ, और जो खंडित हो गई उससे दैत्यों का, या दिति से दैत्यों का या राक्षसों का जन्म हुआ।
तो ये सारी कथाएं कहां की है? संगम युग की कथाएं हैं शास्त्रों में। जब कलयुग के अंत में भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है, मुकरर रथ के द्वारा पाठ बजाता है, जिस रथ के द्वारा ये चरित्र होते हैं, कश्यप का नाम दिया है, माता का नाम दिया है, जिसको फॉलो करने वाले माओवादी हुए, जिसको फॉलो करने वाले दक्षिण भारत से ज्यादा तादाद में निकलने वाले अय्यप्पा स्वामी के फॉलोअर, रुद्रमाला के मन के श्रेष्ठ धर्मों के भी बीज हैं, बहुत थोड़े, और निष्कष्ट धर्मों के भी बीज हैं, बहुत ज्यादा तादा है। माला में नीचे मणके ज्यादा हैं, जो भगवान के नजदीक वाले मणके ऊपर वाले ज्यादा हैं, नीचे वाले सके। तो दो माता है उन्हें, क्या मुख्य कौन कौन? भगवान बाप शिव, जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, उसकी दो माताएं कौन है? पहली माता कौन? अरे भगवान बाप शिव, भगवान बाप शिव देवान वाली माता है, या विदेही पुरुष निराकारी आत्मा है, आत्माएं सब निराकारी होती है, या देवान वाली भी होती है, है? देवदान करती है, देवदारी भी होती है, लेकिन वो सदैव निराकार है। तो जो निराकारी स्टेज जिनकी जाति बनती है, वो बाप कहे जाते हैं, पुरुष, क्योंकि बीज है बाप, वो है ही बीज रूप, उसमें बीज समाया हुआ है। क्या बच्चों को जन्म देने वाला, बच्चियों को जन्म देने वाला बीज पुरुष से आता है या स्त्री से आता है? पुरुष से आता है। तो बाप कौन हुआ असली मूल बाप को? आत्माओं के रूप में पाठ बजाने वाले बांधी आत्माओं ने मूल बाप कौन हुआ? उसका बाप कोई नहीं है, कौन है? तो मूल बाप कौन हुआ? शिव बाप। वो सृष्टि पर आता है आशित बनकर, तो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष आशिक होते हैं वो स्त्री या स्त्रियाँ आशिक होती है बाकी है पुरुष आशिक होते हैं। पुरुष जो आशिक होते हैं वो मासूका के पीछे भागते। तो शिव बाप प्रजापिता रूपी देवान में आने वाली नंबर वन आत्मा माता हुई या नहीं हुई है माता। इसलिए संसार में भी जो श्रेष्ठ धर्म है भारतीय उनमें आरती मानता है गाते भी हैं क्या तुम तो एक माता सब माने तुम एक पर्सनालिटी दो पर्सनालिटी नहीं क्या उसका दूसरा नाम ब्राह्मणों में दिया जाता है बाप दादा क्या उन आत्माओं में जो दो आत्माएं एक ही शरीर में कॉम्बिनेशन कंबाइन है अवधानीश्वर के रूप में है उनमें एक क्या है माता और एक पिता वो सदैव पिता पुरुष है वो कभी स्त्री छोड़ा धार नहीं करता बताई देवान का संग का रंग लेता है देवान का संग का रंग लेने वाली देवान वाली माता होती है या पिता होता है देवान का भी माता और पिता वो चिपक चिपक में आनंद नहीं लेता है देह से क्या उसकी जिज्ञासा रहती है जल्दी से बीज डालू और उगा क्या लगाव रहता है बीज डालने का ज्ञान का हो या ज्ञान का हो देवान का हो कोई भी बीज हो ये पुरुष वृत्ति जो है उसका फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? अरे अपन नंबर पुरुष कौन है राम के भक्त रही के बंदे आ गई है सब आंखों के अंदर अब बल नंबर पुरुष कौन हुआ बाप बाबा नहीं शिव बाप वाली आत्मा जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है वो अपर नंबर पुरुष है वो कोई देहधारी नहीं चिपक चिपक का आनंद नहीं लेता ये आनंद लेने वाली स्त्री जाति हो सकती है पुरुष नहीं होते आज भी दुनिया में पुरुषों को बीज डालने की जल्दी रहती है बीज डालने के बाद चिपक चिपक में लगे रहते बीज डाली निस्तेज हुए और ये पुरुष वृत्ति जैसे बाप है मूल सब पुरुषों का पुरुष सब आत्माओं का बाप वो इस सृष्टि पर आता है कहता है मुझे इस पतित सृष्टि में आना पड़ता है क्या पतित सृष्टि में आना पड़ता है जो पतित बनते हैं उनमें आना पड़ता है और पतित दुनिया में आना पड़ता है पड़ता है माने मजबूरी है या शिक्षा है आना पड़ता है काहे के लिए पावन तो बाद में बनेगी पहले बनेगी ज्ञान का जीवित जानने के लिए आना पड़ता है और ज्ञान का बीज जो अव्वल नंबर माता है परम ब्रह्म है में संपूर्ण 100% ज्ञान का बीज पड़ा और बस 5000 साल के लिए परम धाम में। ऐसे ही होता है या नहीं होता है? तो सारी दुनिया में जितने भी बाप है पुरुष है वो किसको फॉलो कर रहे हैं? एक भगवान बाप को फॉलो कर रहे हैं। जो गीता बोलती है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वसे, मेरे रास्ते का आगमन सारी दुनिया करती है, खास करके भारत। और आप सारी दुनिया आगमन करते, तो वो बाप है और वो पहले नंबर की माता है, एक ही शरीर में एक ही पर्सनालिटी में। इसलिए कहा जाता है तुम एव माता, तू ही मेरी माता है। तू एक के लिए कहा जाता है या दो और दो के लिए कहा जाता है? एक के लिए, एक पर्सनालिटी के लिए कहा गया तुम एव माता च पिता तुम एव, तुम एक ही मेरी माता हो, एक ही मेरा। भारत में वो रूप दिखाया जाता है, कौन सा? आधा, उसमें आधी नारी है और आधा पिता। तो कहते हैं बाप दादा, क्या बाप के रूप में वो पुरुष है और दादा वो नारी के रूप में पार्ट बजाने वाला है। मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा कौन है? मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब आपस में कभी भाई भाई थी या नहीं थी? है? जब सारी वसुधा कुटुंब बनी हुई एक बाप का बच्चा प्रैक्टिकल में, तब सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम थी। तो जितने भी मनुष्य सृष्टि रूपी बच्चे थे वो भाई भाई थे, भाई बहन थे, कोई दूसरा संबंध था वहां का यादगार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई थे। जो भी आत्माएं हैं चाहे हिंदू धर्म से आई हो अनेक जन्म पाठ बजा के, चाहे मुस्लिम धर्म से आई हो, चाहे सिख धर्म से आई हो, कोई भी धर्म से आई, एक टाइम था जब भगवान इस सृष्टि पर सारी दुनिया का पाप बनता है तब सब आपस में भाई भाई या भाई बहन थे, प्रैक्टिकल में भाई बहन थे। क्या ऊंचे ऊंचे सृष्टि थी संगम युग की, स्वर्णिम संगम युग की शक्ति, जब शिव की शक्तियां ये भाव धारण किए हुए थी प्रैक्टिकल में, पक्का पक्का एक शिव बाबा। मनसा वाचा कर्मेंद्रियों में भी, स्वप्न में भी कोई दूसरा संबंध नहीं आता था, ऐसी सृष्टि भगवान ने रची। दो गायन हुआ, बाप दादा, बाप हुआ शिव और दादा हुआ मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा, भाई। भाई है कि नहीं? बड़ा भाई है कि नहीं? बड़े भाई को दादा कहा जाता है कि नहीं? तो मूल बाप दादा कौन हुआ? प्रजापिता। और माता कौन हुई? अरे अपन अंदर माता कौन हुई जिसने लक्ष्य जीत लिया? लक्ष्य वो सृष्टि के माता पिता हुए। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? माता पिता।